शिव बाबा पधारे परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमें सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं ये निश्चय पक्का होना चाहिए, तो आज की मुरली है निश्चय कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं और वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसका ही फिर भक्ति मार्ग में गीता नाम पड़ता है। तो वो सत्य गीता ज्ञान भगवान के सिवा और कोई नहीं सुना सकता है, क्योंकि उसी ज्ञान से ही आत्माएं पतित से पावन बनती है, उसी ज्ञान से ही विश्व का परिवर्तन होता है, उसी ज्ञान से ही सतयुग आता है, इस सृष्टि पर फिर से स्वर्ग आता है। तो वो तो यही समय है, पर वो यादगार गीता है जिसमें कितना बड़ा रोला कर दिया है, जो गीता ज्ञान दाता के बजाय उनका जो पहला पत्ता है उसका नाम डाल दिया है। क्योंकि परमात्मा तो बीज है, उस बीज में ही सारा झाड़ है, सारा ज्ञान है झाड़ का। तो उसका पहला पत्ता है श्री कृष्ण, तो बीज की जगह पहले पत्ते का नाम डाल दिया है। बाबा को बड़ा फील होता था कि कैसी बड़ी भूल कर दी है। चेतन बीज है तो सारा ज्ञान तो बाबा में ही है, पर हाँ पहला पत्ते का भी महत्व होता है। तो श्री कृष्ण है पहला पत्ता, फिर धीरे धीरे कैसे और पत्ते आते हैं। तो आज बाबा ने निश्चय पर बहुत सुनाया है, कितना हमें निश्चय होना चाहिए, तो कैसे ये निश्चय हमारा बढ़े, उसके लिए बाबा ने कई बातें बताई है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 26/12/2024 है। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है। अभी ये गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ये पढ़ाई है, और ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। वो जो पढ़ाइयां है वो पतित से पावन बनने की पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, तो बाबा ने आज ये भी कह दिया है, वो तो माया रावण सिखाता है कई बातें, साइंस के द्वारा कैसे मून पर जाना, मंगल ग्रह तक जाना, क्या क्या परमात्मा के जो ये प्रकृति रचना है उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो फिर उनका ही विनाश होता है। तो ये जैसे माया रावण द्वारा है, ये क्या क्या रिसर्च करते रहते हैं। तो आज बाबा ने उसको रावण की पढ़ाई का है। दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। वो दुनिया का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। कौन सा ज्ञान? तो दुनिया में कौन सा ज्ञान है? उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। आखिर तो विनाश तक पहुंचते हैं ना, इतना साइंस का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, नई नई इन्वेंशंस निकालते रहते हैं, लेकिन अंत में तो वो विनाश करेगा। तो माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, मून तक जाने का ज्ञान, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। अंधे की औलाद अंधे का है ना, तो बाबा कहते हैं सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो उनों की ब्रेन है विनाश के ख्यालात में। उनकी ब्रेन, उनका दिमाग कहाँ चलता है, कैसे ये खौफनाक हथियार बनाए, तो उनों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात है और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात है। हाँ, स्थापना के ख्यालात है, हम कैसे सतयुग बनाएंगे, कैसे क्या क्या होगा वहां, वो विचार सागर मंथन करते हैं, वो तो विनाश कैसे होगा, विनाश की चीजें कैसे बढ़ाएं, बस वो सोचते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात है। ओम शांति, तो बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, बहुत निश्चय चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिला, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दिया, उनके तन में प्रवेश कर ज्ञान दिया। तो बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, मनुष्य है ना, तो इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूं। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इस निश्चय के बिना और जितना भी बाबा ज्ञान देते हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको तो दादा कहा जाता है, हाँ, ये भगवान नहीं है, न ये भगवान है, न ये देवता है, न हमारा गुरु है। तो बाबा कहते हैं इनको दादा कहा जाता है। वैसे सिंधी भाषा में दादा जब कहते मना बड़ा भाई, तो आत्मा रूप में तो बड़ा भाई कहेंगे ना, शिव बाबा का ये भी बच्चा, हम सब भी बच्चे, तो इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए, इस निश्चय में ही रमण करना है, इसी निश्चय में रमण करना है कि ये ज्ञान हमको स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरावनी की है वो बाप खुद कहते हैं, जिसने पधरावनी की है ये नहीं कहते हैं, वो बाप खुद कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक भगवान के, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम क्या बनते हो, हाँ, श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। द्वापर कलयुग से तो भ्रष्ट मत ही मिलती गई, नीचे उतरते गए, पतित होते गए, तब श्रेष्ठ मत मिलती है पावन होने की, देवता बनने की। तो बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है, मनुष्य से देवता बनने का मतलब क्या है, विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु वो देवी गुणों वाले हैं। अभी कलयुग में भी सभी आसुरी गुणों वाले हैं, है सारी मनुष्य सृष्टि, अभी भी मनुष्य है, सतयुग में भी मनुष्य होंगे लेकिन वो देवी गुणों वाले और अभी आसुरी गुणों वाले, परंतु ये है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले, है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वो है आसुरी बुद्धि। तो यहाँ है ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि भगवान ज्ञान द्वारा बनाते हैं, और वो है भक्ति, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर है, ज्ञान का पुस्तक केवल एक ही है बस, और वो पुस्तक का नाम क्या है, गीता। क्योंकि उसी से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है, जो भगवान ने ज्ञान दिया उसका नाम बाद में गीता रखा गया। तो ज्ञान का पुस्तक एक है, तो एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। अब ज्ञान सागर एक है तो उसकी पुस्तक भी एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है। क्राइस्ट ने जो धर्म स्थापन किया उसका एक ही पुस्तक है बाइबल। इस्लाम द्वारा स्थापन हुआ उसका एक ही पुस्तक है कुरान। बुद्ध द्वारा जो धर्म स्थापन हुआ उसका एक ही पुस्तक है धम्मपद, हाँ कहते हैं। तो इसीलिए फिर गुरु नानक ने जो स्थापन किया उनका एक ही पुस्तक है जो ग्रंथ, तो उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है, जिससे धर्म की स्थापना होती है। तो पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, हम देवता थे और हमने गीता ज्ञान सुनकर भगवान से हम देवता बने थे, बाबा कहते ये तो समझते नहीं। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अच्छा कब दिया, परंपरा से। फिर जवाब क्या देते हैं, परंपरा से ये ज्ञान है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच तो है ही नहीं, तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें वो गीता ज्ञान दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। राजयोग का वर्णन भी गीता में ही है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। कौन हमें पढ़ा रहे हैं, सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है ब्रह्मा कौन है, ये है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मुझ पढ़ेंगे। को थोड़ी पता है कि ब्रह्मा के बाप का नाम शिव है, तो मुझ पढ़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई तो होगा ना, ये तो तीन रचना है, एक स्थापना के लिए, दूसरी पालना के लिए, तीसरा विनाश के लिए, तो इनका रचयिता भी तो कोई होगा ना, इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है, अब वो तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्माएं जो परमात्मा की संतान है उन्होंने अभी शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन परमात्मा तो बाबा कहते सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता, कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। ये पढ़ाई क्या नाम क्या है, अलफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं, गीता का ज्ञान किसने सुनाया। अब श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जाता, वो तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं ना, शिव बाबा पर तो कोई ताज नहीं है कोई, क्योंकि वो कभी राज्य तो करता नहीं है सृष्टि पर। श्री कृष्ण के ऊपर तो जन्म से ही ताज दिखाया, पीपल के पत्ते पर सागर से निकला और ताज पहना हुआ, अब बताओ। हाँ तो जन्म से ही ताज। तो बाबा कहते शिव परमात्मा तो निराकार है, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं, वही ज्ञान का सागर है और बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो, सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। हाँ भल तो माली नहीं हो, हाँ वो पेड़ों का इतना ज्ञान नहीं होगा, माली को तो हर पेड़ का ज्ञान है ना, ये कौन सा फल इसमें इस पेड़ पर निकलता है, ये कई बार जड़ी बूटियों का भी ज्ञान होता है, माली को बहुत ज्ञान होता है, परंतु वो औषधियों का या फलों का उसका ज्ञान है तो वो भी एक पढ़ाई है ना, बॉटनी का ज्ञान है। लेकिन बाबा कहते भले तो माली नहीं हो, तुमको वो सब इतना ज्ञान नहीं होगा इन पेड़ों का, परंतु समझ सकते हो बीज कैसे डालते हैं। हाँ बीज डाला जाता है, फिर उनसे झाड़ कैसे निकलता है वो तो पढ़ते हैं, वो तो पता है। वो है जड़ और ये है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता है। शिव बाबा में ज्ञान है और वो हम आत्माओं को देते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे में ज्ञान है और कोई में नहीं। जिनको ये ज्ञान नहीं है माना उनको ईश्वरीय ज्ञान तो है नहीं। तो बाप और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, शिव बाबा में ज्ञान है, अभी हम बच्चों को दे रहे हैं तो हमारे में भी ज्ञान आ गया है, परंतु बाबा कहते हैं जड़ बीज में कोई ज्ञान है ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। वो तो प्रकृति की शक्ति है और उस प्रकृति की शक्ति से वो बीज से कैसे दो पत्ते निकलते हैं और फिर वो पेड़ आगे बढ़ता है, परंतु उनको ज्ञान तो नहीं है ना। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। अब ये है चैतन्य बीज रूप, उनमें तो सारी सृष्टि की नॉलेज है, झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है वो है गुप्त। हाँ बीज बाबा है परंतु नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, कैसे इस बीज से फिर सृष्टि पनपती है, कैसे श्री राधे कृष्ण आते हैं, कैसे ये देवताएं आते हैं, बाबा कहते हैं ये गुप्त है, किसी को पता नहीं। वो है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, एक से अनेक हो जाते हैं ना, तो एक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा बाबा से और के थ्रू शिव बाबा ने औरों को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने औरों को दिया, उन्होंने औरों को दिया, तो बाबा कहते ये कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से पहला पत्ता निकला वो कौन सा था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहेंगे। वो भी तो बाद में बनते हैं ना, जब उनका स्वयंवर होता है, पहले तो श्री राधे श्री कृष्ण है तो दो पत्ते निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, राधे भी थोड़े सालों के बाद जन्म लेगी ना, पहले तो एक ही श्री कृष्ण है, तो सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है फिर पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, शिव बाबा चैतन्य बीज है, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। भल तुम्हारे भी भल दूसरे भी निकलते हैं, और शाखाएं भी निकलती है उनका, फिर बीज हो गया वो धर्म स्थापक, भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनों की महिमा कम होती जाती है। हाँ धीरे धीरे, हाँ जो पुराने हैं उनकी महिमा कम होती जाती है, फिर नई जो आत्माएं आती है उनकी महिमा बढ़ती जाती है, मठ पंथ समाज बहुत सारे बढ़ जाते हैं, इतनी छोटी छोटी शाखाएं ऊपर आ जाती है, फिर उनकी महिमा होने लगती है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे उनों की महिमा कम होती जाती है जो पहले आते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, चित्र भी है। ये चित्र न होते अगर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता आदि की मूर्तियां नहीं होती, इनके चित्र नहीं होते, तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता कि हम ये बन रहे हैं। ये चित्र देखकर हम समझते हैं ना कि हम ये बन रहे हैं, तो बुद्धि में ये ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम के हैं, देवताओं के चित्र बहुत काम के हैं, काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है। इन चित्रों से भी हम ज्ञान लेते हैं क्या कि इन जैसा बनना है, इन जैसा हमें बनना है। जब हम लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इन जैसा बनना है। तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको इन जैसा बनना है, वहां तो क्या कहेंगे, हाँ तुम तो ऊंच हो हम नीच है। पर ये कभी नहीं सोचेंगे हमको भी तुम्हारी तरह ऊंच बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, अब सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, शिव के होंगे या विष्णु के होंगे या राधे कृष्ण सीता राम के होंगे। सबसे जास्ती मंदिर शिव बाबा के ही है। जहां भी जाओ वहां कोई ना कोई शिवलिंग निकलता। अभी ये खुदाई कर रहे हैं ना, ये कितनी मस्जिद है, तो उसके नीचे तो मंदिर था, वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया। बहुत बहुत सारे जब ये मुगल्स आए तो वो नीचे जब खुदाई करते तो शिवलिंग निकल आता है। तो देखो जहां जहां अभी खुदाई करते हैं वहां शिवलिंग निकल आता है, तो फिर क्या कहेंगे। सबसे जास्ती मंदिर तो शिव के हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर शिव बाबा के ही होंगे, फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे, फिर और मूर्तियां भी निकलती है, राधे कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की। बाद में फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे, रचना के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होती है। पहले शिव की सबसे जास्ती पूजा, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम श्री राधे कृष्ण की पूजा, फिर राम सीता की पूजा। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं। अभी हम ज्ञान दे रहे हैं पर हम साधारण माताओं बहनों की पूजा इस रूप से नहीं होती है। वो तो पढ़ती है ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर, बाबा कहते अनपढ़ बन जाएंगे, क्योंकि सत्युग में तो ये ज्ञान नहीं होगा। देवता बन गए, पढ़ाई पढ़ ली, पूरी हो गई, पद मिल गया, तो फिर जैसे अनपढ़ बन जाते हैं। सत्युग में नहीं ये ज्ञान याद होगा, अनपढ़ बनेंगे, पढ़कर फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी जैसे अभी शिव बाबा में पढ़ा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई तो सत्युग में नहीं होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की पढ़ाई है। कितनी ऊंची पढ़ाई है, पतितों को पावन बनाने की पढ़ाई। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी, फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। बहुत है, पांच तत्वों की पूजा, देहधारियों की पूजा, फिर तिवाटे की पूजा। बाबा कहते हैं जहां तीन रास्ते मिलते हैं वहां भी कुछ न कुछ पूजा करते हैं। तो पांच तत्वों की पूजा माना, पांच तत्वों की पूजा क्यों? तो बाबा कहते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार, फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की पूजा करने लग पड़ते हैं। पांच तत्वों की पूजा माना पतित शरीरों की पूजा, क्योंकि शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है। ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण के सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया ये किसी को पता नहीं है। फिर क्यों क्यों पता नहीं है, क्यों सब भूल गए हैं? क्योंकि लाखों वर्ष कह देते, लाखों वर्ष तो लाखों वर्ष, वो कहाँ याद रहेगा। लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ भी न सके, इसीलिए कह देते हैं। हाँ, कई तो फिर लाखों वर्ष न कह करके फिर क्या कह देते हैं, परंपरा, सदा सदा ऐसे ही चलता आया है, ये परंपरा से चलता आया कह देते हैं। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ, कल हम कहाँ पढ़ रहे थे, ये गोवा में जब पोर्चुगीज आए, हाँ, क्योंकि पहले गोवा पोर्चुगीज के अंदर था, तो उस समय पहले सब हिंदू थे, तो वो जो एक राजा आया यहाँ गोवा में, उसने सारे सबको जैसे क्रिश्चियन बना दिया। अभी आप गोवा में जाएंगे ना तो 70-80% तो क्रिश्चियंस है, वो तो सब पहले हिंदू ही थे, लेकिन उन सबको कन्वर्ट कर दिया। फिर पहले अभी हिंदू बसे हैं, लेकिन वो सब अधिकतर क्रिश्चियन, चर्चेस जितनी है उतने मंदिर नहीं है गोवा में, बहुत चर्चेस हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, जो भारत में हैं वो अपने को हिंदू कह देते हैं, वो भी कन्वर्ट हो गए ना, देवता से हिंदू बन गए क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं, परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने ऊपर रखवाते हैं। हाँ, समझते हैं कि हम भी कोई कम थोड़ी है भगवान से कम, तो देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं, पावन देवी देवताओं की पूजा करते, हाँ, पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, पतित देवताओं के आगे तो अपने को पतित ही समझते हैं ना। हाँ, परमात्मा के उन देवताओं की महिमा कहेंगे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, खुद को क्या कहेंगे, मैं नीच पापी दास कपटी, तो बना अपने आप को पतित समझते हैं, लेकिन फिर अगर कोई उनको कहे तुम पतित हो, तुमने तो कहा मैं पापी हूँ, वो कहेगा मैं काहे को पापी हूँ, पर देवताओं के आगे तो कहते हैं, भगवान के आगे तो अपने को कहते हैं, तो अपने को पतित समझते थोड़ी है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते हैं। हाँ, कुमारियों की पूजा बहुत होती है नवरात्रि में, खास कुमारियों की पूजा होती है। हाँ, वैसे घर में बेटी होती है छोटी है तो माँ बाप उनकी पूजा करते हैं, परंतु किसी के घर में बेटे ही बेटे हैं, बेटी है ही नहीं, तो फिर जो पड़ोसन की बेटी होगी उसको बुलाएंगे और उसकी पूजा करेंगे, उसको खिलाएंगे। हाँ, तो इसीलिए किसी ने कहा कि भाई पहले तो क्या, अभी क्या करते थे बच्चों, कन्या की भ्रूण हत्या कर देते थे, तो भ्रूण हत्या अभी कन्याएं होंगी नहीं, लड़कियां होंगी नहीं, तो जिस घर में लड़की नहीं है तो पूजा कहाँ करेंगे, इसलिए पड़ोसी की लेनी पड़ती है, इसलिए कहते नहीं एक कुमारी जरूर घर में होनी चाहिए ताकि वो नवरात्रि में उनकी पूजा तो हो। तो बाबा कहते हैं कुमारों को इतनी, कुमारों की इतनी नहीं करते पूजा, मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, तो बहनों का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, इसीलिए बाबा ने बहनों को आगे रखा है, और भाइयों का फर्ज है बहनों का रिगार्ड रखना, ऐसे नहीं जो आया कह दिया बहनों को, इसलिए भगवान ने बहनों को इतना आगे रखा है, तो भाइयों का भी फर्ज है हाँ बहनों को इतना रिगार्ड देना। तो बाबा कहते हैं मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, वास्तव में देखा जाए ब्रह्मपुत्रा, हाँ ब्रह्मपुत्रा कहते, तो पुत्रा माना बेटा, पुत्र, पुत्र या पुत्रा ये आ गया तो ये पुरुष की बेटा की निशानी है, पुत्री अगर है तो वो बेटी की निशानी है, तो वास्तव में है तो ब्रह्मपुत्रा मेल, और उसका कहाँ पर उसका उद्गम स्थान दिखाते हैं, कैलाश पर्वत, गंगा जमुना का तो गंगोत्री जमुनोत्री है, लेकिन कैलाश पर्वत वो जो हिमालय का एक पहाड़ है, कैलाश पर्वत पर कोई पहुंच नहीं सका, तो वो कहते वहां से ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। तो देखो, तो बाबा कहते हैं ये भी समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी है, सबसे जितने भी जितनी भी नदियां हैं भारत में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। तो बाबा कहते ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर के मिलती है। बहुत लंबा है उसका सफर, हमने गूगल में देखा कैसे ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, फिर वो तिब्बत में जाती है, फिर आसाम में जाती है, मतलब वो बहुत घूम करके फिर कैसे गंगा में जाके मिलती है, और फिर वो जो बे ऑफ बंगाल है उसमें, फिर वहीं पर है गंगा सागर और उसका मेला लगता है। तो नदियां और सागर मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा भी वहीं मिलती है। तो ये भी बाबा कहते हैं, ये भी समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि सच्चा मेला नदी और सागर का है, वो कौन सा आत्मा और परमात्मा का मेला है, ये सच्चा मेला है। और जहां ये मेला है सागर और गंगा और ब्रह्मपुत्रा सब मिलते हैं, तो उसको डायमंड हार्बर कहते हैं। देखो बाबा उसका भी वर्णन करते हैं, वो डायमंड बनाने वाला शिव बाबा सागर वो कैसे आत्माओं को डायमंड बनाता है, हीरा बनाता है। तो जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है, मेला भी वहीं लगता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है, वो तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, हाँ इसलिए ब्रह्मपुत्रा है, तो वास्तव में ब्रह्मा, तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है, आप पानी को नहीं कहेंगे, यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है, मिलन है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ये जैसे सागर और नदी का मेल है। तो बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है, तो जिस द्वारा एडॉप्शन होती है ये बहुत गुह्य समझने की बात है। मेल है ये ब्रह्मा, मेल है, फीमेल नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ है। हाँ कैसे ये ब्रह्मा बड़ी माँ है जिनके द्वारा फिर बच्चे एडॉप्ट होते हैं। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्राय लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं, पहले हाथ से लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपाई है। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं शुरू में, तो कितना सिंपल होगा ना, ये तो बाद में संस्कृत के उनको उनका श्लोक बना दिया। तो श्लोक आदि थे नहीं, ये तो बिल्कुल सहज बात है, ज्ञान कोई मुश्किल थोड़ी है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए, इसको कहा जाता है ये समझना कि परंपरा से चला आया है, तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोझरे में आए हो, सत्युग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं, ये भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग जिसको संन्यास धर्म कहते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वालों को संन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं। अब वो है हद का संन्यास, रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है, भले जंगल में जाते पर ये पुरानी दुनिया से कोई अलग थोड़ी कोई दुनिया है, जंगल है तो इसी दुनिया में। अभी तुम जाते हो नई दुनिया में, तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। सबको ज्ञान का नेत्र मिल गया तो कितने नॉलेजफुल बन जाते हैं, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं, ये जो भगवान हमें ज्ञान देते इतना ऊंचा ज्ञान है, इनसे ऊंचा ज्ञान है ही नहीं। तो इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं है, वो तो माया की नॉलेज है। कहाँ ले जाते हैं एकदम, फिर वो तो बुद्धि में इतना चलो बैठ भी गया, बहुत जितना दुनिया का ज्ञान है सब उनको हो भी तो भी, बाबा कहते हैं चलो हो भी तो भी वो जीवन में सक्सेसफुल हो सफल हो ये जरूरी थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी वो तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है, वो लोग चांद पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब चलो चांद पर गए भी मंगल तक जाएंगे या जो कुछ भी स्पेस में रहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नया ज्ञान नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं ये सब माया का पॉम्प है, कल पहले भी ऐसे ही नहीं हुआ था, ये सभी माया का पॉम्प है, बहुत शो करते हैं, अति डीप में जाते हैं फिर कुछ की कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान भी हो जाता है क्योंकि प्रकृति के अंत में जाने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बाबा कहते फिर नुकसान भी हो जाता है, उनों के ब्रेन में विनाश के ही ख्याल आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते भी हैं कि इनसे ही विनाश होगा, ये भी उनको पता है कि हम जितना वो बनाते जा रहे हथियार बनाते जा रहे बॉम्ब्स बनाते जा रहे इनसे विनाश होगा, ये भी उनको पता है। ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते भी हैं हाँ क्या कहानी है, दो बिल्ले लड़े माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, ये कहानी कोई बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी कहानी है, परंतु खेल कितना बड़ा है, कैसे दो बिल्ले लड़े और माखन तीसरा खा गया, ये बड़ी जो रियल कहानी है वो तो बहुत बड़ी है, पूरा खेल है ये संसार का ड्रामा। नाम इनों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नींद है, जो विनाश करने वाले वैज्ञानिक कितना आविष्कार कर रहे हैं, इनका नाम अभी कितना बाला है, इनको क्या क्या प्राइजेस मिलती है, नोबेल प्राइज मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। तो इन द्वारा ही विनाश की नींद है, कोई तो निमित्त बनता है ना विनाश के लिए। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था पर हम नहीं थे, एडम और ईव को गॉड ने पैराडाइज में भेजा, वो ये समझते धरती पर पैराडाइज था और हम उस समय नहीं थे, पर हम नहीं थे, इस्लामी बोधी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है, वो जो कहते हैं उसमें बाबा कहते हैं समझ अच्छी है। भारतवासी तो कहते हैं देवी देवता धर्म तो लाखों वर्ष पहले था, वो तो फिर भी मानते हैं चलो अभी 2024 है तो आफ्टर क्राइस्ट है, तो एडी कहते हैं 2024 एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, चलो 2024 भी कहा तो भी 2000 ही कहेंगे ना वो भारतवासी, फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी उनकी बुद्धि है, क्रिश्चियंस की बुद्धि अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म तो लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना, सनातन तो कहते हैं पर सनातन भी कितना सनातन, 5000 साल से तो और कोई पुरानी चीज है ही नहीं, तो कितने बुद्धू ठहरे। बाप भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ है उनको उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, महान वे समझदार बन गए फिर उन्हों को ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी याद रहे तब ना, इतनी ऊंची बातें भगवान देते पर याद रहे तब है ना इसकी कमाल, परंतु फिर भी याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, ये सहज करके बताया, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता। हाँ कई ऐसे क्या क्या बोलते रहते हैं, तो बाबा कहते ज्ञान नहीं है ना उनको, समझते मैं बहुत ज्ञानी हूँ परंतु मुख से जो शब्द निकलते हैं वो ज्ञान के शब्द नहीं निकलते हैं, तो फिर बाबा कहते ज्ञान रफू चक्कर हो जाता, रफू चक्कर माना उड़ जाता, हाँ चला जाता भाग जाता। कईयों को कहते भाई रफू चक्कर हो जा, माना यहाँ से निकल जा भाग जाओ, तो रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, कैसे अब तुम आगे बढ़ सकते हो, उठो, हाँ रफू चक्कर नहीं हो जाए ज्ञान तुम्हारे अंदर से। तो बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, तो आज गुरुवार सद्गुरुवार है, तो बाप उस दिन भी सद्गुरुवार था। अच्छा, आज भोग है, हाँ फिर बाबा संदेशी को कहते हैं भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना। हाँ, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है। उस समय बहुत जाती थी, ध्यान में जाती थी और स्वर्ग में पहुंच जाती थी और हाथ ऐसे हिलाती रहती थी। अभी तो ये सब नहीं है, लेकिन उस समय तो बहुत होता था। फिर ऐसे थाली उठाती, सब आंखें बंद, और फिर ऐसे, तो फिर तो बाबा ने ये सब बंद करवा दिया। तो ये बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। हम साक्षात्कार का भी को भी सच्ची अच्छी तरह समझना होगा, कई तो अपना भी कुछ उसमें मिक्स करते हैं। तो इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है। ऊपर में कैसे होगा, परम धाम में थोड़ी तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से रास रचाऊं, ये परम धाम की तो बात नहीं है ना, ये संगम पर बाबा के साथ है, ऊपर में कैसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, इसी निश्चय से रमण करना है। हाँ, इस ज्ञान को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, क्योंकि मुरली से ही शक्ति मिलेगी ना, परिवर्तन लाने की शक्ति बाबा की मुरली से ही मिलेगी, इसलिए बाबा कितना जोर देते हैं मुरली पर। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। क्या हमारी पोजीशन है बाबा हमें बताते हैं, उसकी स्मृति रहे। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तो जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं है, ऐसे आपका पोजीशन क्या है, हमारा पोजीशन कौन सा है, कौन सा हमारा पद है। तुम्हारा पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना इसे सदा स्मृति में रखो, कभी भूलो नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। हाँ, मैं तो बदल ही नहीं सकता, कई समझते ना, माना मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं समझते हैं। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चीटी को, माया चीटी है तो माया चीटी को जीतना सहज हो जाएगा। तुम ऊंची चोटी पर रहो तो माया चीटी बन जाएगी, तो उसको जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी माना आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आज का अव्यक्त इशारा, आज 26 तारीख है। श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उसकी निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। और आज का अव्यक्त, आज का जो पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो तो स्वमान है, मैं एक रस एक की लगन में मगन हूँ। योग अभ्यास क्या करना है? मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा की याद की लगन में मगन हूँ। बाबा की सकाश को अनुभव करते हुए एक रस अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा से चारों तरफ सकाश फैल रहा है। यह अभ्यास करना है। धारणा क्या हो? लगन में मगन रहने का अभ्यास करना है। और चिंतन, एकाग्रता की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, उस पर चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी शशि बहन आएंगे, आज सत गुरुवार है और अभी पहले डबल विदेशियों का प्रोग्राम